تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ آمین۔
According to Song of Solomon 1 verse 1
سلیمان کی غزل غزلات کے مطابق، اس کی پہلی آیت کے مطابق،
It is the greatest song ever
اور اس کے مطابق یہ سب سے عمدہ غزل ہے۔
The key word in verse 2 is kiss or kisses
اور کل جیسا کہ ہم نے سنا کہ جو دوسری آیت تھی اس میں منہ کا اور چومنے کا ہے ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔
Verse 2
وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔
So yesterday we considered the kisses of Christ's mouth
تو کل ہم نے یہ جانا کہ کس طرح مسیح اپنے لوگوں کو چومتا ہے۔
This morning we look at verse 3
اس لیے آج ہم تیسری آیت پر غور کرتے ہیں۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں۔
The key word here is ointment or fragrance
تو یہاں پر جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے عطر۔
Our theme this morning is Christ's fragrant name
تو آج جو ہے وہ ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہے مسیح جو ہے وہ کس طرح خوشبو کا نام ہے۔
Our text speaks of ointments. What are ointments?
ہمارا جو یہ آج کا حوالہ ہے یہ خوشبوؤں کا ذکر کرتا ہے یا عطر کا ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟
Ointments are oils or lotions.
یہ ایسے عطر ہیں یا روغن ہیں جنہیں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
As to their form, they are semi-viscous liquids.
اور یہ مختلف طرح کے لکوڈ سے جو ہے یعنی مایا سے بنائے جاتے ہیں۔
Thus we read of an ointment running down Aaron's beard.
اور یہ زبور میں بھی ذکر ہے جہاں پہ لکھا کہ تیل جو ہے وہ ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا نیچے تک آیا۔
In Psalm 133.
زبور 133 میں۔
Ointments are made largely of ingredients from plants.
تو زیادہ تر جو خوشبوئیں ہیں وہ پودوں سے یعنی ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔
Parts of flowers, shrubs or trees.
درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے یا پھولوں سے۔
Barks, woods, resins.
اور اس طرح لکڑیوں سے اور دیگر چیزوں سے۔
Seeds, petals, roots.
بیجوں سے اور اس طرح سے جڑوں سے دوبارہ سے ہوئی۔
And then these are combined and made into oils or ointments.
اور پھر اس کو تیل یا روغن میں شامل کر کے خوشبو بنائی جاتی ہے۔
Salves or spices.
مسالے بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں بعض اوقات۔
Balms or perfumes or incenses.
اور اس میں مختلف طرح کی خوشبوئیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔
I imagine that the ladies here know a lot more about these things practically than I do.
مجھے امید ہے کہ جہاں یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ پرفیومز کے بارے میں جانتی ہیں، خوشبوؤں کے بارے میں جانتی ہیں۔
What are the uses of oils and ointments in the Bible?
بائبل مقدس میں تیل یا خوشبوؤں کا کیا کیوں ذکر کیا گیا ہے، یہ کیا ذکر ہے؟
They have a role in food.
اب وہ خوراک میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔
Both as ingredients for food and in helping bake the food.
ان کو کھانا پکانے کے لیے اور کھانے کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
Oils were used as lighting.
اور تیل جو ہے وہ روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
Fuel for the lamps in the tabernacle or in homes.
اور گھروں میں اور خیمہ اجتماع میں استعمال کیا جاتا تھا تیل۔
Remember the hand-held lamps in the parable of the five wise and five foolish virgins.
آپ نے دس کنواریوں کی تمثیل سنی ہے تو اس میں بھی چراغوں کا ذکر ہے جس کے لیے تیل کی ضرورت پڑی۔
Ointments were used in medicine.
تیل جو ہے وہ ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
Jeremiah 8 refers to the balm of Gilead.
تو جو یرمیا کی کتاب اس کا آٹھواں باب، اس میں روغن بلسان کا ذکر ہے، روغن کا ذکر ہے۔
The good Samaritan bandaged the man left half dead and poured oil into his wounds.
اور نیک سامری کی تمثیل دیکھے تو اس میں بھی جب اس نے اس شخص کو بھٹیارے کو دیا تو اس نے اس پر تیل سے جو ہے مرہم پٹی کی۔
Ointments were used also in cosmetics.
جو آئل ہے یا خوشبوئیں یہ جو کاسمیٹکس ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔
Oil makes the face to shine in Psalm 104.
اور چہرے کو روشن یعنی کہ روشن بنانے کے لیے بھی، یعنی کہ چہرہ چمکے، اس لیے بھی تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔
The most lengthy course of ointments used as cosmetics in scripture is Esther 2:12.
آسر 2:12 پڑھیں گے۔
Esther 2:12.
जब एक एक कुंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अख्सुरस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते हैं, यानी 6 महीने मुर का तेल लगाने में और 6 महीने इत्र और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में.
6 months with myrrh and 6 months with sweet odors.
यानी 6 महीने मुर का तेल और 6 महीने इत्र का.
A whole year of beautifying.
ये सब खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता था.
Oils were also used at funerals.
जो तेल का इस्तेमाल ये जनाजों पे भी किया जाता था.
To mask the smell of decaying bodies.
ताकि जो फौतशुदगान हैं उनकी जिस्मों से बदबू ना आए.
Asa's funeral in 2 Chronicles 6 verse 14. 2 Chronicles 6 verse 14 refers to funeral ointments.
2 Chronicles 6
verse 14.
Okay, but it is not mentioning. Maybe
it first. Talks about a bed with a great burning of spices.
No, no, no. Maybe 1 Chronicles? May I check?
It would be 1 Chronicles. Excuse me. It's 1 Chronicles.
Okay.
Because, yeah. Because he was the third king.
But it is also not.
I'm thinking kings. Anyway, take my word for it. They burned precious ointments at his funeral.
तो यहाँ से हम यानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल जनाजों में भी किया जाता है.
Ointments were also used at various ceremonies.
तो जो तेल का इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ रस्मात या तकरीबात पर भी किया जाता था.
Olive oil was put in the Old Testament grain offering.
तो जैतून का तेल जो है वो अक्सर मौकों पर इस्तेमाल होता था.
There was a special mixture for the holy incense in the Old Testament.
तो ये खुशबू जलाने के लिए नहीं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता था.
In English, this consisted of stacte, onycha, galbanum, and frankincense. But I don't know if we can translate all those into Urdu.
Yeah. तो ये मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे खुशबुओं का जिक्र उसके बारे में कहा.
Likewise, there was a special mixture for the holy anointing oil.
मसा करने के लिए पाक तेल का इस्तेमाल किया जाता था, यानी तेल को इस्तेमाल किया जाता था.
That was applied to the tabernacle and the priests.
और ये खैमा इस्तेमाल के लिए और कहनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था.
So far, we have explained what ointments are and we've spoken of their use in the Bible.
और फिर बाइबल के इसमें हम इन सब का जिक्र और इनके इस्तेमाल का जिक्र भी पढ़ते हैं.
Our text speaks of quote thy good ointments.
तो आज की जो आयत हमने पढ़ी है उसमें लिखा है कि तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है.
The possessor of these ointments is Solomon, who pictures Christ.
सुलेमान इस सब को मसीह की तस्वीर के लिए इस्तेमाल करता है.
The quality of these ointments is good.
तो जो भी यहाँ पे अज्जा इस्तेमाल हुए हैं वो खालिस अज्जा का इस्तेमाल किया गया है.
You can imagine how good Solomon's ointments were.
तो आप समझ सकते हैं कि सुलेमान एक बादशाह था, तो उसके पास कैसे अच्छे अच्छे इत्र जो हैं वो होंगे या खुशबुएं उसके पास होंगी.
He had access to all the best ingredients. These ingredients came from far-flung places.
तो ये जो खुशबुएं थी या इत्र थे ये मुख्तलिफ मुल्कों से, यानी दूर दराज के मुल्कों से भी उसके पास लाए जाते थे.
Throughout the whole Arabian Peninsula, including Yemen.
ये यमन से और अरब की ये जो अरब पेंसुला वहां से आते थे.
Some claim that Solomon's ingredients came as far as Pakistan and India and Nepal.
बाज़ लोगों का दावा है कि जो खुशबुएं वहां पर जाती थी वो पाकिस्तान, यानी तब तो पाकिस्तान नहीं था, ये हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल से ये सारी चीजें ये खुशबुएं थी वहां पे जाती थी.
इंक्लूडिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स लाइक बालसाम, फ्रैंकिंसेंस एंड मर.
और इस तरह से मुर और उसके अलावा बलसान और दीगर जो कुछ चीजें हैं.
सो व्हाट यूज ऑफ ऑइंटमेंट्स आर स्पेशली इन व्यू इन आवर टेक्स्ट.
तो इन सब बातों का हमारे आज के हवाले से क्या ताल्लुक है.
फूड और लाइटिंग,
खुराक या रोशनी के लिए.
और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स,
अद्वियात या कॉस्मेटिक्स के लिए.
और फ्यूनरल्स और सेरेमनीज,
जनाजों के लिए या दीगर तकरीबात के लिए.
ऑफ दोज सिक्स द आंसर इज कॉस्मेटिक्स,
या कॉस्मेटिक्स के लिए.
द सेवर ऑफ थाय गुड ऑइंटमेंट्स,
क्योंकि तेरा इश्क में से तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है.
देयर अरोमा और फ्रेग्रेंस,
और फिर आगे वो कहते तेरा नाम इत्र रेखता है.
दैट्स व्हाई आई हैव एंटाइटल्ड दिस क्राइस्ट्स फ्रेग्रेंट नेम.
तो इसलिए मैंने इस आज के सुबह के पैगाम को नाम दिया है मसीह की खुशबू का नाम.
And this sweet fragrance of ointments explains largely how and why they're used.
और इसका नाम जो है इसलिए कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है.
At funerals.
जनाजों पे.
At ceremonies like anointing office bearers.
या तकरीबात पर या किसी को ओहदे पर मखसूस करने के लिए.
When you burn incense because of the nice smell.
जब आप खुशबू जलाते हैं उसके लिए.
The nice fragrance is even helpful in medicine and lighting.
तो फिर दोबारा से कि ये जो खुशबुएं हैं ये लाइटिंग के लिए यानी रोशनी के लिए और खुराक के लिए इस्तेमाल होती
है. And people enjoy beautiful smells.
और लोग इसे लुत्फंदोज होते थे इन खुशबुओं से.
You do too, don't you?
आप भी खुशबुओं से मुतासर होते हैं या खुश होते हैं?
Yes.
Ointments and perfume rejoice the heart.
जो ये खुशबुएं ये दिल को शाद करती हैं.
That's Proverbs 27 verse 9.
मिसाल 27वां बाब.
The Bible even refers to apothecaries or perfumers.
तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में मज़ीद ऐसे बयान करती है.
Bezalel and Aholiab made ointments necessary for the Mosaic temple.
जो बज़लीएल था और जो दूसरा शख्स बज़लीएल है.
Special perfumers made.
उन्होंने खैमा इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ खुशबुएं जो थी वो तैयार की थी अलियाब ने, बज़लीएल अलियाब ने.
Special perfumers made the sweet odors for Asa's funeral.
और इसी तरह से जनाजों के लिए भी.
Hananiah the perfumer helped rebuild Jerusalem's walls in Nehemiah 3.
और नहमिया ने भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जब वो यरूशलेम की दोबारा से फसीलों को तामीर कर रहा था.
And no doubt Solomon had the best of perfumers in his day.
और हम समझ सकते हैं कि सुलेमान के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे ये जो सारा कुछ ये तैयार करते होंगे या इस्तेमाल करते होंगे.
After all, his reign marked the highest point in Israel's wealth and civilization.
क्योंकि सुलेमान की जो बादशाह थी वो अपनी इंतहाई शान शौकत पर थी.
As the wisest of men, Solomon employed the best people money could hire.
और सुलेमान जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था इसलिए वो इसके लिए खुशबुएं बनाने के लिए बेहतरीन लोगों को दस्तयाब करना उसके लिए मुश्किल ना था.
हिराम द क्राफ्ट्समैन वाज हिज एक्सलेंट बिल्डर.
हिराम जो था उसके पास शानदार एक शख्स था जो बिल्डिंग्स बना सकता था.
फर्स्ट किंग्स 10 टेल्स अस ही हैड सुपर्ब कुक्स एंड वेटर्स.
यानी ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो सुलेमान बादशाह था उसके पास हर किस्म का बंदा तो खाना बनाने वाला और दीगर लोग जो थे और खुशबुएं बनाने तैयार करने के लिए भी लोग मौजूद थे.
Ecclesiastes 2 says he had excellent musicians.
और उसके पास अच्छे सांस बजाने वाले भी थे.
So the fragrances of Solomon's perfumers must have been amazing.
तो इसका मतलब यह है कि जो सुलेमान ने बंदे रखे थे वो जब खुशबुएं तैयार करते थे वो बहुत शानदार किस्म की खुशबुएं तैयार करते.
He has the best ingredients.
वो अज़ा में बेहतरीन थी.
Worked by the best of perfumers.
और उन लोगों के जरिए तैयार की गई थी जो बहुत शानदार थे यानी बड़े कारीगर थे इस काम में.
With the best mixtures.
और वो बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल करते थे इन सबको बनाने के लिए.
Even better than the perfumes of Chanel or Outfitters.
और यहाँ पे वो बताते हैं कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था.
Or Calvin Klein and Breakout.
और ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में हैं कैल्विन क्लीन और ब्रेकआउट और आउटफिटर उनके परफ्यूम से भी ज्यादा अच्छे परफ्यूम होते थे.
What does all this mean here this morning for us?
लेकिन इन सब का यहाँ पर मतलब क्या है?
The most fragrant thing in all the universe by far is our Lord Jesus Christ.
इस दुनिया में जो सबसे अच्छी खुशबू है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है.
2 Corinthians 2 speaks of the sweet savor of Christ.
तो जो दूसरा ग्रंथ है वहां पर ये बयान किया गया कि यीशु मसीह जो है वो बेहतरीन खुशबू है.
A beautiful fragrance to God and to all believers.
बेहतरीन खुशबू खुदा के लिए और हम सब के लिए.
Knowing Jesus is like smelling a beautiful fragrance. Knowing Jesus.
यीशु मसीह को जानना जानने का मतलब यह है कि हम बहुत बेहतरीन खुशबू को सूंघ रहे हैं.
Spiritually and by faith.
रूहानी तौर पर और ईमान के जरिए.
The child of God sees Christ in his humiliation and exaltation.
تو جو خدا کا فرزند ہے وہ یسوع مسیح کو اس کی پست حالی میں اور سرفرازی کی حالت میں دیکھتا ہے.
By faith we hear Christ in the preaching of sacred scripture.
اور ایمان کے ذریعے ہم جب منادی کی جاتی ہے کلام مقدس کی تو ہم یسوع مسیح کے بارے میں سنتے ہیں.
By faith we taste Christ in the word and sacrament and know he is good.
اور جب ساکرامنٹ ادا کیے جاتے ہیں یعنی پاک بپتسمہ اور پاک شراکت تو ہم اس میں مسیح کا ذائقہ چکھتے ہیں.
By faith we touch Christ and experience healing. By faith we touch Christ.
ایمان کے ذریعے ہم مسیح کو چھوتے ہیں.
Like the woman with the issue of blood in Mark 5.
اور مرقس 5 میں جس عورت کا ذکر کیا گیا ہے.
And now coming to the fifth of our five senses.
اور اب ہم اپنے جو ہمارے پانچ حواسِ خمسہ ہیں ان کے بارے
میں بات کریں. By faith we smell Christ who possesses the most delightful fragrance.
اور جب ہم اپنے حواسِ خمسہ سے مسیح کے یعنی جو پانچ سینسز ہمیں خدا نے دی ہیں چکھنا زونگنا اور دیگر تو ان میں بھی جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں یا ان کے ذریعے سے مسیح کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین تجربہ ہوتا ہے.
His fragrance will fill us in heaven and in the new world.
اور اس کی خوشبو آسمان میں اور نئے جہان میں بھی ہوگی.
And by faith we sense him here too.
اور ایمان کے ذریعے ہم اس کو یہاں پر محسوس کرتے ہیں.
Verse 3.
تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے, تیرا نام عطر ریختہ ہے, اس لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں.
Think of the biblical record of Christ while he was on earth.
بائبل مقدس کا وہ بیان اگر ہم مطالعہ کریں جہاں پر یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے.
At the start of his life,
اس کی زندگی کا آغاز,
the wise men from the east brought him three gifts.
تو آپ کو بتا کہ مشرق سے جو مجوسی تھے وہ اس کے لیے تین تحفے لائے تھے.
Gold, frankincense and myrrh.
سونا, لبان اور مر.
The last two were costly fragrances.
اور جو دو تھے یعنی کہ لبان اور مر, یہ انتہائی مہنگے لوازمات تھے یا خوشبوئیں تھیں.
At the end of his earthly life,
اور اس کی زندگی کے اختتام پر, زمینی زندگی کے اختتام پر,
we read of three anointings of his body.
اور اس کے جسم کو تین بار مسا کیا گیا.
Mary, Lazarus's sister, anointed him with a pound of spikenard.
اور اس طرح سے مریم جو اس کی بہن تھی لازر کی, اس نے بھی اس کے پاؤں کو وہ کیا تھا, کیا کہتے ہیں مریم کہیں گے.
That was a few days before his death in John 12.
ہاں, یسوع مسیح کی موت سے کچھ دن پہلے.
Joseph of Arimathea and Nicodemus anointed his dead body with a mixture of myrrh and aloes.
اور اسی طرح سے یوسف ارمتیا نے اور نکودیمس نے بھی جب یسوع مسیح کا کو دفن کرنے کی باری تھی تب بھی انہوں نے ایسا ہی خوشبوؤں کا استعمال کیا.
After they took him down from the cross.
جب انہوں نے اس کو صلیب سے اتارا تھا.
And the ladies brought sweet spices to anoint Christ in his sepulcher.
اور جب اس کے جسم کو رکھا گیا تو پھر عورتیں اور مسالے دار چیزیں لائیں.
And you know why they couldn't do it.
اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا اس کو مسالہ کیوں نہ لگا سکیں.
He was risen.
کیونکہ وہ زندہ ہو گیا تھا.
As a reward for his perfect life and obedience on earth,
اس کی جو اس نے زندگی فرمانبرداری کی زندگی اس کے اجر میں,
at his coronation in heaven,
جب آسمان پر اس کے وہ آسمان پر گیا,
Jesus Christ was anointed with the oil of gladness.
تو وہ خوشی کے عطر سے یا خوشبو سے اسے وہ کیا گیا.
That Psalm 45 and Hebrews 1.
زبور 45 اور عبرانیوں 1, یعنی اسے بادشاہ بنایا گیا, وہ بادشاہ ہی اس نے حاصل کیا.
This oil of gladness is the refreshing and empowering Holy Spirit filling him with great unspeakable joy.
تو یہ جو خوشی کا تیل ہے یہ روح القدس کی علامت ہے جو کہ شادمانی کو ظاہر کرتا ہے.
Like a gorgeous perfume.
ایک ایسے پرفیوم کی طرح یا عطر کی طرح جو بہت شاندار ہو.
Everything about Jesus from beginning to end,
ہر چیز یسوع مسیح کے بارے میں جو شروع سے آخر تک ہے,
while on earth and in heaven,
چاہے وہ زمین کے تعلق سے ہے یا آسمان کے تعلق سے,
his name is a fragrant aroma,
تو اس کا جو نام ہے وہی شاندار خوشبو ہے,
to God and to all his people,
خدا کے لیے اور انسانوں کے لیے.
But there is one work of Jesus that is especially highlighted here.
لیکن خدا یسوع مسیح کا ایک کام جس کو یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے,
His atoning death,
اس کی کفارہ دینے والی موت.
its fragrance.
ये उसकी खुशबू है, यानी उसकी कफारा बख्श मौत हमारे लिए खुशबू है.
Christ hath loved us and hath given himself for an offering and sacrifice to God.
यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को बाप के हजूर कुर्बानी के तौर पर पेश किया.
For a sweet smelling fragrance, Ephesians 5 verse 2.
और इफिसियों के मुताबिक कि उसने अपने आप को खुशबू की मानद अपने आप को नजर कर दिया.
That perfect satisfaction for the sins of his church.
ताकि वो अपनी कलीसिया के गुनाहों का कफारा करे.
That manifestation of God's justice and mercy.
ताकि खुदा के रहम और इंसाफ का या अदल का इजहार हो.
Was the sweetest smelling savor ever.
और ये सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है वो खुशबू है.
Many, many Old Testament references to the animal sacrifices speak of their beautiful aroma to God.
और जितनी भी पुराने ऐदनामे में कुर्बानियों का जिक्र मिलता है तो उनमें हमें बेहतरीन खुशबुओं का जिक्र मिलता है जो खुदा के हुजूर अदा की जाती थी.
And they all point to the sacrifice of God's son.
और ये सब जो कुर्बानियां थी ये किसकी तरफ इशारा करती थी? यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी की तरफ.
Noah offered sacrifices after exiting the ark.
और नूह ने भी कुर्बानी की जब वो कश्ती से बाहर आया.
And the Lord smelled a sweet fragrance.
और वहां पर लिखा खुदा ने उसकी खुशबू ली.
Leviticus chapters 1 through 7 deal with the sacrifices in Israel.
और अबार की किताब पहले से सात बाब में सारी कुर्बानियों का जिक्र है.
They were offered millions of times over hundreds of years.
और वो बहुत बार अदा की जाती रही हैं.
And each one of them was a sweet fragrance to God.
और हर एक कुर्बानी में खुशबू का इस्तेमाल हुआ.
All pointing to the cross.
और ये सब जो है ये सलीब की तरफ इशारा करती है.
Think of Christ's threefold office.
मसीह के तीन औहदों पर गौर करें.
As our prophet, priest, and king.
बतौर हमारा नबी, बादशाह और काहिन.
Consider all the anointing oil poured out in the Old Testament.
याद रखें कि तेल को किस तरह उंडेला जाता था पुराने अदनामे.
Over the head of priests.
काहिन के सर से.
And kings.
और बादशाह के सर से.
And sometimes prophets.
और नबियों के सर से.
It was fragrant.
और ये खुशबूदार तेल होता था.
There was a special recipe for the priest's anointing.
और कहनों को जब मसा किया था उसके लिए खास किस्म की जो है वो इत्र इस्तेमाल किया जाता था या तैयार किया जाता था.
Doubtless the oil poured over the heads of the kings was expensive and extravagant.
और इसी तरह से बादशाहों पर जो तेल उंडेला जाता था वो बहुत ज्यादा महंगा होता था.
Solomon's own anointing oil was brought from the tabernacle, 1 Kings 1.
और जो सुलेमान के लिए तेल लाया गया वो खैमा इस्तेमाल से लाया गया.
The anointing oil for prophets was probably fragrant too.
और जो नबियों के लिए तेल इस्तेमाल होता था वो भी खुशबूदार होता था.
That oil speaks of the fragrant Holy Spirit.
और ये जो तेल है ये तेल की खुशबू ये रूहुल कुद्स है.
Authorizing and equipping Old Testament office bearers.
और ये उन सब के लिए था जो पुराने अदामे में जिनको ओहदे मिलते थे.
And especially the Lord Jesus himself in type.
और इसी तरह से यीशु मसीह के जमाने में भी इसका यही इस्तेमाल था.
Question and answer 31 of the Heidelberg Catechism.
जो हाइडलबर्ग कैटेकिज्म है उसका सवाल नंबर 31
asks, why is he called Christ, that is anointed?
क्योंकि वो मसीह यीशु को मसीह क्यों कहा जाता है या यीशु क्यों मसीह कहलाता है?
The answer explains his threefold office.
क्योंकि इसका जवाब ये है क्योंकि उसके पास तीन ओहदे हैं.
Of prophet, priest, and king, and what that entails.
वो हमारा बादशाह है, काहिन है और नबी है.
And now we must think of this as a beautiful perfume.
और वो हमारी बेहतरीन जो है वो खुशबू है.
For Christ's name is a fragrant ointment.
और इसीलिए यीशु मसीह का नाम जो है वो इत्र रेखता है. यहाँ पे लिखा हुआ इत्र रेखता.
A good name is better than precious ointment.
एक बेहतरीन नाम जो है वो एक कीमती खुशबू के लिए मुनासिब है.
So says Ecclesiastes 7 verse 1.
वाइस की किताब में लिखा है.
And Christ's good name is far, far better than a precious fragrance.
और मसीह का जो नाम है वो किसी भी कीमती खुशबू से ज्यादा बेहतर है.
Our text says that his name is as ointment poured forth.
और यहां पर जो हमारे पास तर्जमा है वहां पे लिखे तेरा नाम इत्र रेखता है.
This ointment isn't merely stored in a sealed jar or flask.
Yes, come on.
Such sealed ointment is fragrant, but no one can actually smell it.
ये इस तरह से बंद किया जाता था कि कोई उसे सूंघ ना सके.
You've got to open the jar and pour it forth.
इसके लिए आपको उसके खोलना पड़ता और ऊपर से सर से उंडेलना पड़ता था.
And pouring speaks of abundance.
और जो उंडेलने की अलामत है ये बुनियादी तौर पर भरपूरी की अलामत है.
The pouring of the oil upon Aaron in Psalm 133.
और ज़बूर 133 में हारून का जिक्र है.
It went on his head, his beard, his clothing.
कुछ दिन पहले मैंने कहीं पे हमारी इबादत में बताया था कि जब उनको मसा किया जाता था तेल यहाँ से उंडेला जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो दाढ़ी तक आता था, पूरे जिस्म पर फैल जाता था, जो इस बात की अलामत था कि अब ये खुदा का हो गया है और इसमें रूल कुछ है.
But the pouring upon Christ was far more effusive.
और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह के लिए सब कुछ कैसे जो है वो ज्यादा अहमियत रखता है.
His head, his hair, his face, his body, his feet, his clothing.
मसीह के सर के लिए, चेहरे के लिए, दाढ़ी के लिए, जिस्म के लिए, पांव के लिए.
The Bible says that Christ received the authorizing enchanting spirit.
और इसीलिए हम बाइबल को इसमें से मसीह के मुतालिक देखते हैं कि वो किस तरह खुदा के रूप से काम करता था.
Above his fellows, Psalm 45.
ज़बूर 45 में भी इसके बारे में बयान किया गया है.
Without measure, John 3.
और इसी तरह से यूहन्ना 3 बाब.
And in all his fullness, John 1.
और इस तरह से यूहन्ना पहले बाब में उसकी भरपूरी के बारे में या मामूरी के बारे में.
God poured forth the infinitely costly and fragrant Holy Spirit on Jesus.
और खुदा ने अपना कीमती रूह कुद्दस जो कि तेल की अलामत है उसे अपने बेटे पर उतारा यानी यीशु मसीह पर.
Far more lavishly than did the pardoned woman in Luke 7.
और इसी तरह से उस औरत को जिसे माफी मिली थी जिसका जिक्र लुका 7 में है.
Or did Mary of Bethany in John 12.
या बैतनिया की मरियम के बारे में जिसका जिक्र यूहन्ना 12 में है.
Yet this holy spiritual perfume on Jesus.
और यीशु मसीह पर इस कीमती तेल का या रूहानी तेल का इस्तेमाल.
Was not overdone.
अभी खत्म नहीं हुआ था.
Sometimes too much perfume goes for your throat and makes you cough.
और बाज़ों का ये तेल जो है ये गर्दन में चला गले में चला जाता है फिर खांसी होती है.
The anointing of Jesus wasn't overdone, done, and it doesn't cloy.
और लेकिन ये सुमसी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है.
This is the one fragrance.
एक ही खुशबू है.
That you can never get enough of.
और जो कि कभी भी जो है खत्म नहीं होती.
When this anointing oil comes on Jesus, it is poured forth and so fresh.
और जब ये तेल यीशु मसीह पर उंडेला गया तो ये ताजा तेल था.
Ever fresh, everlastingly fresh.
और ये ताजा और हमेशा कायम रहने वाला था.
This fragrance never dissipates.
और ये कभी ये खुशबू जो है ये कभी खत्म नहीं होती.
Our perfumes and deodorants and aftershaves and colognes.
और जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं चाहे वो परफ्यूम्स हैं या शेव करने के बाद जो खुशबूएं लगाई जाती हैं.
They wear off.
वो खत्म हो जाती हैं.
You need to reapply.
आपको दोबारा से लगाना पड़ता है सब कुछ.
Christ's fragrance never dissipates or goes off.
लेकिन मसीह की जो खुशबू है यानी जो मसीह है उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती.
Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor.
तो मिसाल में एक हवाला है कि मुर्दा मक्खियों की जो है बदबूदार करती है.
Christ's fragrance is eternally pure and beautiful.
लेकिन मसीह की जो खुशबू है वो नहायत खूबसूरत शानदार और ना कभी खत्म होने वाली है.
But who is it that dearly loves this fragrance?
लेकिन कौन इस खुशबू से मोहब्बत करता है?
Verse 3.
इसलिए कुंवारियां तुझ पर आशिक हैं.
Who are the virgins?
कुंवारियां कौन हैं?
They are the elect, redeemed and regenerate church.
ये वो लोग हैं जिन्हें कलीसिया कहा गया है या यानी वो लोग जिन्हें खुदा ने बरगुजीदा करके अपनी कलीसिया में शामिल किया है या अपनी कलीसिया बनाया है.
They are Christ's virgin in 2 Corinthians 11 verse 2.
दूसरे कुरिन्थियों 11 के मुताबिक ये मसीह की दुल्हन है.
All true believers are called virgins in Psalm 45.
ज़बूर 45 में तमाम जो खुदा के बरगुजीदा लोग हैं उन्हें खुदा की दुल्हन कहा गया है या कुमारिया कहा गया है.
And Revelation 14.
और इसी तरह से मुकाशवा 14 में.
People who are chaste and pure.
वो लोग जो खालिस हैं दिल से.
In refreshing biblical doctrine.
और बाइबली तालीम रखते हैं.
And in a fragrant godly life by God's grace.
और दीनदराना जिंदगी गुजारते हैं.
Unbelievers and false professors are not virgins.
جو لوگ غیر ایماندار ہیں یا بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں.
And so they do not and cannot love Christ and his sweet aroma.
اس لیے وہ مسیح کے عاشق نہیں ہیں, یعنی وہ مسیح سے محبت نہیں کرتے.
Only by true faith can you smell it.
جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہی اس خوشبو کو سونگ سکتا ہے.
The ungodly are often sexually impure.
کیونکہ جو غیر ایماندار وہ اکثر جنسی طور پر ناپاک ہوتے ہیں.
And they are always spiritually impure.
اور اس لیے وہ روحانی طور پر بھی ناپاک ہیں.
2 Corinthians 2 speaks of these things.
دوسرا کرنتھیوں جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے.
It refers to the aroma of true preachers and therefore of biblical Christ-centered preaching.
اور اسی لیے جو دوسرے کرنتھیوں میں بیان کیا گیا وہ منادی کے بارے میں کہا گیا کہ پولوس کہتا ہے کہ یہ ہلاک ہونے والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے کس طرح جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہے یہ خوشبو جو ہے.
2 Corinthians 2 verses 15 and 16.
یہاں پہ لکھا کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے, بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے, اور کون ان باتوں کے لائق ہے.
To believers, this is the fragrance of life unto life.
اور جو نجات پانے والے ہیں یعنی جن کے پاس جو زندگی کے لیے ان کے لیے زندگی کی خوشبو ہے.
A clean, healthy aroma.
صاف ستھری اور صحت مند.
To unbelievers, this is the stench of death unto death.
اور مرنے والوں کے لیے یعنی کہ جو غیر ایماندار ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے موت کی بو ہے.
We're all familiar with bad smells.
ہم سب جو ہے پوری خوشبو یعنی جو بدبو ہے اس سے بھی واقف ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے.
The worst smell is the smell of death.
جس طرح موت کی بو.
I don't know if you have ever been in a morgue.
مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ میں سے کوئی مردہ خانے میں گیا ہو.
Dead bodies often induce vomiting.
مطلب وہاں پر ایسی خوشبو آتی ہے جہاں بدبو آتی ہے جس سے آپ الٹی ہو سکتی ہے.
And 2 Corinthians 2 here.
اس حوالے میں جو ہم نے کرنتھیوں میں سے پڑھا.
Doesn't refer to the smell of someone else's death.
کسی اور کی خوشبو کے لیے یہاں پر نہیں بیان کیا گیا.
It refers, as it were, to the stench of one's own death.
اور یہاں پر صاف طور پر لکھا گیا ہے مرنے والوں کے لیے اور یہاں پہ فرق بیان کیا گیا ہے.
To believers, Christ is a sweet smell in the preaching.
ایمانداروں کے لیے کلام کی بنیادی جو ہے وہ مسیح کی خوشبو ہے.
But those who do not love him realize he will be their judge.
تو لیکن جو ایمان نہیں رکھتے مسیح یسوع پر ان کے لیے یہ خوشبو نہیں ہے, اس لیے وہ اس عدالت کا سامنا کریں گے.
In the context of 2 Corinthians 2,
اس حوالے کے پس منظر میں جو ہم نے کرنتھیوں میں پڑھا,
it speaks of the aroma of biblical preaching.
یہ جو خوشبو ہے یہ بائبلی بنیادی کی ہے.
And of biblical church discipline.
اور اسی طرح سے بائبلی کلیسیائی ضابطے کی ہے کہ ایک چرچ کس طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے.
Because God uses that to reclaim offenders.
کیونکہ خدا جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ شریروں کو سزا دیتا ہے.
Our time is running out, beloved.
ہمارا جو وقت ہے وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے.
So I want to make some application.
تو میں یہاں پہ کچھ اطلاعات پیش کروں گا یعنی جو ہمارے لیے ضروری ہیں.
Where today on earth is the house filled with the odor of the ointment poured on Christ?
وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اس بڑی خوشبو کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے؟
That place is the true church.
وہ جگہ کون سی ہے؟ مسیح کی حقیقی کلیسیا.
The church as she meets for worship.
جب کلیسیا عبادت کے لیے جمع ہوتی ہے.
Where Christ is preached as crucified and risen for us.
اور جہاں پر مسیح مصلوب اور زندہ ہوئے مسیح کی منادی کی جاتی ہے.
And by extension at this conference.
اور اسی طرح سے اگر اس میں اضافہ کیا جائے تو اس کانفرنس پر بھی.
But what if we are spiritually careless?
لیکن کیا ہو اگر ہم روحانی طور پر بے پرواہ ہوں یا لاپرواہ ہوں؟
What if we are walking in impenitence?
اور اگر ایسا ہو کہ ہم بے راہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟
What if we are backslidden and going carnal?
اور ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے تو صحیح زندگی گزار رہے ہیں لیکن پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے ہوں.
Not confessing our sins and drawing near to God.
اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور خدا کے نزدیک جا رہے ہیں.
we lose our sense of smell.
तो फिर हम अपनी जो सूंघने की हिस्सा उसको खो सकते हैं.
Like when you have a cold or a blocked up nose.
और जब आपका नाक जो है वो अक्सर बंद हो जाता है.
Perhaps some of you got COVID.
और हो सकता है आप में से कई लोगों को कोविड हुआ हो या नहीं कोरोना हुआ हो.
My wife and I did for 10 days. We couldn't smell anything.
और मुझे और मेरी बीवी को हुआ था और हमने 10 दिन तक हम किसी चीज को सूंघ नहीं सकते थे.
You don't want to be like that spiritually.
तो हम भी इस तरह से अगर ये बातें हमें पाई जाती हैं कि हम लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, गुनाहों का शिकार हैं, तो फिर हम भी ऐसे हैं जो खुशबू की हिस जो है वो खो चुके हैं.
So let us keep turning to the Lord in true repentance and faith.
इसलिए लाजम है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरें ताकि हम दोबारा से उसको सूंघ सकें, उसकी खुशबू को सूंघ सकें.
Then we can breathe in deeply the sweet fragrance of Jesus.
इसलिए हमें गहरे तौर पर मसीह यीशु में सांस लेने की जरूरत है.
He is our husband who loved us and gave himself for us.
बतौर कलीसिया हम उसकी दुल्हन है वो और वो हमारा शोहर है जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी.
The sweet savor unto God.
और खुदा के हजूर अपने आप को खुशबू के तौर पर नजर किया.
Verse 3.
दोबारा से रसूलुल्लाह पहला बाब तीसरी आयत. तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्र रेखता है, इसलिए कुमारियां तुझ पर आशिक हैं. आमीन.
आमीन.